जाति भेद की कठोरता और उसकी प्रतिक्रिया। यदि निर्गुणिया संतों की वाणियों का सामाजिक अध्ययन के लिए विश्लेषण किया जाए तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि इन वाणियों को रूप देने में मध्यकालीन सामाजिक स्तर भेद की कठोरता का बड़ा हाथ है। प्रायः सभी संत समाज के उस स्तर से आए थे जो आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत निचले भाग में था। व्यक्तिगत रुचि और संस्कार के कारण इस कठोर स्तर भेद की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न रूप में हुई है, पर सब में इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव है, केवल मात्रा का ही भेद है। मध्यकाल में जातियों और उपजातियों की सीमाएं जो बढ़ती गईं और कठोर से कठोरतर होती गईं, उसके अनेक कारण हैं। सबकी थोड़ी बहुत चर्चा किए बिना उसके मध्यकालीन रूप को समझाना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे जाने में यहाँ संकोच नहीं किया जा सकता है। मध्यकालीन इस विशेषता को समझने के लिए दो प्रकार से प्रयास किया जा सकता है। प्रथम तो यथासंभव पुराने जमाने के अर्ध विस्मृत इतिहास से इस प्रथा का मूल और उसका विक्रम विकास देखकर हम उसका मध्यकालीन रूप समझ सकते हैं। परंतु कठिनाई यह है कि पुराने जमाने की कोई सीमा नहीं है और उसके बारे में हम जो कुछ भी संग्रह करते हैं उसकी पूर्णता के बारे में संदेह बना रहता है। हमेशा कुछ छूट जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए उससे पूरा चित्र स्पष्ट नहीं होता है। इसी कारण विद्वानों ने एक दूसरा उपाय भी सोचा है। हमें अज्ञात पर बहुत अधिक भरोसा न करके ज्ञात का अध्ययन करना चाहिए और आधुनिक काल की सामाजिक व्यवस्था हमारी सर्वाधिक ज्ञात वस्तु है, जो अज्ञात को इस ज्ञात के सहारे खोजना चाहिए। इस दृष्टि से आधुनिक जाति भेद व्यवस्था की जानकारी आवश्यक है। आगे हम दोनों ही रूप में इस विषय का अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस अध्ययन के अंत में आधुनिक जातियों की नामावली हमेशा कुछ छूट जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए उससे पूरा चित्र स्पष्ट नहीं होता है। इसी कारण विद्वानों ने एक दूसरा उपाय भी सोचा है। हमें अज्ञात पर बहुत अधिक भरोसा न करके ज्ञात का अध्ययन करना चाहिए और आधुनिक काल की सामाजिक व्यवस्था हमारे सर्वाधिक ज्ञात वस्तु है, जो अज्ञात को इस ज्ञात के सहारे खोजना चाहिए। इस दृष्टि से आधुनिक जाति भेद व्यवस्था की जानकारी आवश्यक है। आगे हम दोनों ही रूपों में इस विषय का अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस अध्ययन के अंत में आधुनिक जातियों की नामावली और उसका विश्लेषण भी सुविधा के लिए जोड़ रहे हैं। इस महादेश के विशाल जनसमूह में आर्यों के बाद भी अनेकानेक जातियां उत्तर पश्चिम की ओर से आकर इस देश में बस गईं। इनमें की अधिकांश जातियों ने वैदिक आर्यों के धर्म और समाज विधान को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। जिन पंडितों ने नेतृत्व विज्ञान की दृष्टि से भारतीय जनसमूह का अध्ययन किया है, उन्होंने लक्ष्य किया है कि इन समूचे जनसमूह में 7 प्रकार के चेहरे पाए जाते हैं। प्रथम तुर्क ईरानी टाइप, इसमें सीमांत और बलूचिस्तान के बलूच, ब्राहुई और अफगान शामिल है, जो शायद फारसी और तुर्की जातियों के मिश्रण से बना है। दूसरा हिंद आर्य टाइप, जिसमें पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के क्षत्रिय, राजपूत और जाट शामिल हैं। तीसरा शक द्रविड़ टाइप, जिसमें पश्चिम भारत के मराठे, ब्राह्मण, कुनबी, कुर्गी आदि शामिल हैं। यह शक और द्रविड़ जातियों के मिश्रण से बना है। चौथा आर्य द्रविड़ टाइप, जिसमें उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान, बिहार आदि प्रदेशों के लोग हैं। इनका उच्चतम स्तर हिंदुस्तानी ब्राह्मणों से और निम्नतम स्तर चमारों से बना है। यह टाइप आर्य और द्रविड़ जातियों के मिश्रण से बना है। पांचवा मंगोल द्रविड़ टाइप, जिसमें बंगाल, उड़ीसा के ब्राह्मण और कायस्थ तथा पूर्वी बंगाल और असम के मुसलमान हैं। यह शायद मंगोल द्रविड़ और आर्य के मिश्रण से बना है। छठा मंगोल टाइप, जिसमें नेपाल असम बर्मा की जातियां हैं। सातवां द्रविड़ टाइप, इसमें गंगा की घाटी से लेकर सिंघल तक मद्रास हैदराबाद मध्य प्रदेश आदि की जातियां शामिल हैं। रिजली पीपल ऑफ इंडिया पृष्ठ 31-33। अब यह स्पष्ट है कि यद्यपि हिंदुओं के धर्मशास्त्र के नाम पर सिर्फ आर्यों के संस्कृत ग्रंथ ही पाए जाते हैं, यद्यपि समूची भारतीय जनता इन ग्रंथों के प्रतिपाद्य से अधिक विस्तृत है। पहले वैदिक साहित्य से शुरू किया जाए। न जाने कब से भारतवर्ष में यह प्रथा रूढ़ हो गई है कि किसी भी विषय का मूल वेदों में खोज निकालने का प्रयत्न किया जाता है। आधुनिक शोधों से इस प्रथा को और भी बल मिलता है। भारतीय समाज की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण विशेषता इस जाति भेद को भी वेदों से खोज निकालने का प्रयत्न किया गया है, पर इस विषय में बड़ा भारी मतभेद है। भारतीय पंडितों में तो इस विषय में काफी मतभेद होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जाति भेद वाली प्रथा उनके लिए केवल पांडित्य प्रदर्शी वाद विवाद या समाज शास्त्रीय कौतूहल का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसी बात है जिसकी अच्छाई या बुराई उनके राष्ट्रीय जीवन मरण का प्रश्न है। किंतु विदेशी पंडित भी इस विषय में एक मत नहीं है। किसी किसी के मत से इस प्रथा का कोई भी उल्लेख समूचे वैदिक साहित्य में नहीं है, पर दूसरों के मत से जाति भेद का मूल बीज वैदिक साहित्य से वर्तमान है। वस्तुतः जाति प्रथा का कोई एक मूल नहीं है, इसलिए इसके भिन्न भिन्न पहलुओं के मूल भिन्न भिन्न स्थानों पर खोजने चाहिए। जहाँ तक वर्तमान लेखक ने अपने साहित्य को समझा है, वहाँ तक उसे यह कहने में संकोच नहीं कि वैदिक साहित्य में इस प्रथा के कुछ मूल बीज जरूर वर्तमान हैं। परंतु इस युग में यह प्रथा धर्म और समाज का इतना जबरदस्त अंग निश्चय ही नहीं थी। समस्त वेदों ब्राह्मणों उपनिषदों और धर्म गृह स्रोत सूत्रों में शायद ही कहीं जाति शब्द का व्यवहार आधुनिक अर्थ में हुआ। यह इशारा भी नहीं किया जा रहा है कि वैदिक साहित्य में बराबर आने वाले चार वर्णों के नाम को ही जाति प्रथा का मूल रूप माना जाए, क्योंकि वर्ण और जाति को समानार्थक शब्द नहीं माना जा सकता। परंतु यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वर्ण व्यवस्था जाति भेद के बहुत से लक्षणों के जटिल होने के लिए उत्तरदायी जरूर है। मूल संहिताओं ब्राह्मणों और उपनिषदों में ब्राह्मण क्षत्रिय राजन्य विषय वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्णों का भूरिशा उल्लेख है। इनके अतिरिक्त अन्य जातियों की चर्चा तो नहीं है, पर प्रसंग क्रम से चांडाल पौलकस निषाद दास शबर भिषज रथकार और वृषल शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है जिससे जान पड़ता है कि ये चार वर्णों से बाहर हैं। अगर हम जाति भेद के आधुनिक रूप का विश्लेषण करें तो तीन प्रधान लक्षण स्पष्ट ही जान पड़ेंगे। प्रथम, जन्म की प्रधानता। द्वितीय, छुआछूत। तृतीय, अन्य जाति में विवाह संबंध का निषेध। वस्तुतः इन तीनों बातों का कोई न कोई रूप वैदिक साहित्य में मिल जाता है। जन्म की प्रधानता को हम फिलहाल छोड़ते हैं, क्योंकि वह विवाह के प्रश्न से अत्यधिक संबद्ध है। यहाँ बाकी दो लक्षणों के विषय में चर्चा की जाएगी।